एक मच्छर ने आके काट लिया, उसमें वो डेंगी फीवर का उसमें वायरस था, अब मुब्तला हो गया एक शख्स। कहाँ से क्या इब्तदाई अलाइम क्या हैं और कहाँ तक ये बीमारी जाती है?
ये पहले तो इसका ये होगा कि मतलब बंदे जब मच्छर काट लेगा तो उसको जो है बुखार होगा, ठीक है जी। मतलब जिस तरह नाम से जाहिर है, डेंगी बुखार मतलब फीवर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 105 to 106 फ़ारेनहाइट उसको टेम्परेचर होगा, ठीक है। और साथ में जो है उसको हेडेक भी होगा, उसको जो है मसल और जॉइंट में पेन होगा। और जो डायग्नोस्टिक अलामत है इसकी, इसके मतलब जो पेशेंट है उसके आंख के पीछे जो है उसको दर्द महसूस होगा, पूरे सर में महसूस नहीं होगा, जो आंख के पीछे है वो कह रहा है कि मुझे जो है इधर पेन महसूस हो रहा है। और साथ में जब ये टेम्परेचर इसका होगा तो ये एक दिन बाद भी आ सकता है, 2 दिन, जिस तरह मलेरिया में आते हैं, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं मलेरिया के साथ, मलेरिया का ट्रीटमेंट कर लेते हैं और डेंगी का ट्रीटमेंट छोड़ लेते हैं, क्योंकि उसमें भी जो है टेम्परेचर 2 दिन बाद ही जो है एड्रपली बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या हो जाता है कि जब ये टेम्परेचर इसको मतलब बंदे को ज़्यादा हो तो 4 से 6 दिन बाद उस बंदे में क्या होगा, उसके जो नेचुरल ओरिफिसेज है, जो जिस तरह नोज़ है, ठीक है ना, कान है, तो इससे जो है ब्लीडिंग शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि ये वायरस क्या कर लेता है, ये कैपिलरी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो हमारे बदन में छोटे छोटे जो शरियान है, ठीक है ना, जिसको हम कैपिलरीज, ये शरियान बाद में जाके जो आर्गन को ब्लड सप्लाई करते हैं ये कैपिलरीज में पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो ये उसी कैपिलरीज को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल रगे है उससे ये ब्लड और उसमें जो प्लाज्मा है, ठीक है, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, वो बाहर निकलना शुरू होगा, ठीक है। और साथ में इसमें क्या होगा, इसके जो ये अलामतें हैं ये 3 स्टेजेस में होंगे। फर्स्ट को हम कहते हैं फेब्राइल फेज, ठीक है ना, इसमें ये हेडेक, टेम्परेचर, नाजिया, ओमेटिंग, ठीक है, ये होंगे। और नेचुरल ओरिफिस जिस तरह कान है, नाक है, इससे जो है ब्लड आना शुरू होगा। लेकिन दूसरा फेज से क्रिटिकल फेज, क्रिटिकल फेज में हो क्या होगा, उसको जो है हाइपोटेंशन होगी उस बंदे को, ठीक है। और उसका जो GIT है, जो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, निज़ाम इन्हज़ाम, उसमें जो है उससे भी जो है ब्लड बॉडी के अंदर जो एब्डामिन है उसमें आना शुरू होगा, ठीक है। और दूसरा जो पेल्विक कैविटी है और एब्डामिन, इसमें जो है जिस तरह कैपिलरीज और ब्लड आना शुरू हो जाते हैं बाहर, ठीक है, तो उसमें एसाइटिस होगी और बंदे को डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन महसूस होगा, ठीक है। और तीसरा पेज है रिकवरी पेज, अगर उस बंदे को हमने फ्लूइड थेरापी और सब कुछ दे दिया तो ये रिकवर होगा। लेकिन रिकवरी फेज, ये फर्स्ट जो फेज है जिसको हम कहते हैं फेब्राइल फेज, ये 1 से लेकर 6 दिन तक होता है, ठीक है। फिर ये क्रिटिकल जो है ये 10 दिन से लेकर 14 दिन तक होता है, ठीक है। और जो ये लास्ट रिकवरी स्टेज है, ये रिकवरी स्टेज जो है 2 से 3 तक रहता है।
डॉक्टर साहब, इसमें जब सबसे पहले अलाइम ज़ाहिर होते हैं, आम तौर पर लोग, अगर पता चल जाए कि मसलन डेंगी फीवर है या उन अलाइम का अंदाज़ा हो जाए, तो लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। घबराने के बजाय क्या करें?
घबराने की बजाय ये कर ले कि मतलब पहले तो ये कंफर्म कर ले कि हाँ, इस बंदे को डेंगी हुआ है, जो पेशेंट है, ठीक है ना, उसको जो अलामतें महसूस है, क्योंकि बीमारी तो जो भी हो वो ख़तरनाक ही है सारे, ठीक है ना, लेकिन हर बीमारी का इलाज भी है, ठीक है ना। तो वो सपोर्टिव थेरापी या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये उसने कंफर्म करना डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाके उसकी डायग्नोसिस कर लेगा कि हाँ, इस बंदे को फीवर या जो फीवर आ रहा है, या 2 दिन बाद या 3 दिन, या नेचुरल ओरिफिसेज, इससे भी पता चल जाता है कि हाँ, इस बंदे को डेंगी है, क्योंकि वो डॉक्टर को बता देगा कि हाँ, मेरे जो है कान से या नाक से जो है खून बहना शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो वो क्या कर लेगा, उसने जो है थ्रू ब्लड सैंपलिंग उसको कंफर्म करना है डॉक्टर ने, और पेशेंट को बताना है कि हाँ, आपको डेंगी है या कोई और बीमारी है।
ये जो जब खून आता है तो ये मिसाल के तौर पर नाक दबाने से इस तरह से रुक जाता है या नहीं?
ना इस तरह, क्योंकि ये क्योंकि हमारा जो नाक है या कान है, ठीक है ना, इसमें कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, इधर जो है ये हवा को साफ करने के लिए इसमें म्यूकस होता है, ठीक है ना, तो कैपिलरीज यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये वायरस इसी पे अटैक करके उस कैपिलरी को डिस्टर्ब कर लेता है और ब्लड आना शुरू हो जाता है। लेकिन बॉडी के जिस जगह पे भी, इवन सारे बदन में रेशेस आ जाते हैं, ठीक है ना, सुरह दाने जिस तरह मीजल के बीमारी में होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सुरह दाने, ये जो सुरह रंग सारे बदन में आएगा, ये किस तरह आएगा? ऐसा लगेगा कि पूरा बदन जो है ब्लड लगेगा, लेकिन उसमें वाइट वाइट स्पॉट्स होंगे, सफेद धब्बे होंगे। और उसको आप जो है मतलब अंगूठी फिंगर से आप इस तरह प्रेस करोगे तो वो गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप हटा लोगे तो ये वापस जो रेड कलर के जो स्पॉट्स है वो रेशेस दोबारा आ जाएंगे।
वैक्सीन इसकी कोई मौजूद है या नहीं?
हाँ, इसके बचाव के लिए जो है पूरे दुनिया में तो नहीं है, लेकिन बास कंट्री जहाँ पे जो है इसकी प्रेविलेंस बहुत ज़्यादा है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिस तरह इंडोनेशिया है, इंडिया है, ठीक है ना। तो इसकी जो है 3 डोजेज मिलते हैं वैक्सीन, और ये सनाफी एक कंपनी है जो वेल नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है ना। और इन लोगों ने जो है इसके लिए वैक्सीन डिज़ाइन किया है, और बाकी कोई दूसरी कंपनी नहीं है, लेकिन इसकी 3 डोजेज है, और मेरे ख्याल में $206 पे जो है इसकी 3 डोज मिलते हैं। मतलब इतना महंगा नहीं है, लेकिन आपको जो है 6 महीने 1 साल के लिए जो है इस बीमारी से छुटकारा मिल
दो
जाता
सौ
है,
छः डॉलर में तकरीबन 1 साल के लिए छुटकारा मिल जाता
मिल
है। मेरे ख्याल
जाएगा।
में हिंदुस्तान यानी जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी रकम है।
लेकिन ये भी है जिस तरह इस टाइम 2017 के अगस्त और ये जुलाई में जो है ये बीमारी बहुत फैल गई है। मतलब रिसेंटली श्रीलंका में 1,07,000 लोग जो है इस बीमारी में
मुबतला हो
मुबतला
गए।
है, और उसमें तकरीबन 296 लोग मर गए, ठीक है ना। और 2015 तक इंडिया में 10,000 लोग सिर्फ 2 महीने में, ठीक है ना। और उन लोगों में से जो है 32 लोग मर गए। तो और इवन उस टाइम अभी श्रीलंका में ये हाल है कि इवन पेशेंट को जो है बेड ही नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तो वो एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो ये तो अभी जिस तरह रिसेंट रिसर्च कह रहा है कि एक पेशेंट से दूसरे
दूसरे
पेशेंट
पेशेंट
में
मुंतकिल हो जाएगा।
मुंतकिल होगी, अगर मुंतकिल नहीं होगी तो उस जगह पे जो है एक मास्कीटो उसको काटेगा, ठीक है, जो जिस तरह मैंने कहा है एडस एजिप्टी, ठीक है ना। तो वो जब उस बंदे को काट लेगा तो वो मास्कीटो जाके हेल्दी पर्सन को काटेगा, और उसी से ये जो है उसको फैल जाएगी। इस वजह से मेरे ख्याल में $200 कोई बड़ी रकम नहीं है इसकी 1 साल प्रिवेंशन के लिए।
डॉक्टर साहब, इसमें हुकूमत का क्या किरदार होता है, क्या कर सकती है
हाँ,
हुकूमतें?
हुकूमत यही कि मतलब जिस तरह मैंने कहा कि इंडोनेशिया, इंडिया या जो सेंट्रल एंड साउथर्न यूएसए है, ठीक है ना, इन जगहों पे इसके वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो हुकूमत को यही करना चाहिए कि इस बीमारी के वैक्सीन अवेलेबल है तो क्यों ना हम जो डेवलपिंग कंट्री है और अंडर डेवलप कंट्री है, क्योंकि उन लोगों के माहौल जो है ख़राब होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे पानी भी बहुत मतलब कड़े होते हैं, ठीक है, जो ब्रीडिंग प्लेसेस है इस मॉस्किटो के लिए, ठीक है, और जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक कंट्री जो मेरे ख्याल में डेवलपिंग हो और अंडर डेवलप हो, कि ये वैक्सीन हर एक फर्द को जो है फ्री मुहैया कर ले तो अच्छा
कम से
होगा।
कम
हाँ
कुछ सब्सिडीज इस सिलसिले में दे सकते हैं। डॉक्टर
बिल
साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।